दामिनी अभी भी आहान के कब्जे में थी। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो घूमते हुए बेसमेंट के दूसरे हिस्से में पहुंची। वहां एक कमरा था और कमरे में एक लड़की दुल्हन के जोड़े में बंधी हुई थी। पहले तो दामिनी ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन बाद में जब उसकी नज़र उस लड़की के गले में पड़े नेकलेस पर गई तो उसके मुंह से अक्षरा गोयनका का नाम निकला। अपने सामने अक्षरा गोयनका को इस तरह बंधे हुए देखकर दामिनी के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। वो कुछ पल वहीं पर खड़ी उसे देखती रही, फिर घबराते हुए जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। दामिनी वापस अपने हिस्से में आ गई थी और वो चेयर पर बैठकर अक्षरा के बारे में सोच रही थी। इसका मतलब ये सब आहान का प्लान था। लोगों को ये लगता है कि अक्षरा गोयनका अपनी शादी से भाग गई थी, लेकिन वो झूठ था। उसे आहान ने किडनैप कर रखा था। आहान इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकता है, किसी ने क्यों नहीं सोचा? उसे अक्षरा से शादी नहीं करनी थी तो उसने उसे किडनैप कर लिया। सबको यही लगता है वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी की रात भाग गई, लेकिन यहाँ तो सच कुछ और ही है। आहान का पागलपन खत्म नहीं हुआ था, बस वो सही होने का दिखावा कर रहा था। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, मैं नहीं चाहती मेरी हालत भी अक्षरा गोयनका जैसी हो। वो लड़की जो मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में से एक राहुल गोयनका की बेटी है, उसकी बेटी की ये हालत है तो आहान मेरे साथ क्या करेगा? कहीं मैं भी अक्षरा की तरह गुमनाम ना हो जाऊं। दामिनी जब से उस बेसमेंट में आई थी उसे यही लगता था कि वो कैसे भी करके निकल जाएगी, लेकिन अब अक्षरा की हालत देखकर उसे साफ हो गया था कि आहान की कैद से निकल पाना आसान नहीं है। अक्षरा गोयनका जो पिछले 6 महीना से यहाँ जानवर की तरह बंधी हुई थी, उसका सच कुछ और ही था। बाहर सबको यही लगता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, वो भी आहान ओबरॉय से शादी वाले दिन। दामिनी इस तरह गुमनामी की जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी। अक्षरा की हालत देखकर उसे घबराहट होने लगी और उसकी आंखों में आंसू थे। आहान और चाहत डाइनिंग टेबल पर थे। चाहत धीरे धीरे खाना खा रही थी क्योंकि आहान ने कुछ देर पहले उसे जो भी कहा था उसके बाद खाना उसके गले से नहीं उतर रहा था। आहान ने चाहत की हरकत को नोटिस किया, वो खोई हुई लग रही थी। आहान ने चाहत के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, डॉल तुम लॉस्ट लग रही हो, मुझे तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देखना है। कोई बात है तुम्हारे दिल में? जो है कहो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आहान काफी प्यार से बात कर रहा था इसलिए चाहत का कॉन्फिडेंस भी हाई हो गया। उसने धीरे से कहा, एक्चुअली आहान आई एम नॉट रेडी फॉर एनीथिंग। जैसे ही चाहत ने मना किया आहान के चेहरे के भाव बदलने लगे। चाहत ने तुरंत मामले को संभालते हुए कहा, मैं आपको मना नहीं कर रही, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं इतनी जल्दी सब कुछ नहीं सहन कर पाऊंगी। चाहत ने देखा तभी आहान के फेस पर हल्की मुस्कुराहट थी और उसने चाहत के गाल पर हाथ रखकर कहा, बस इतनी सी बात डॉल, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस रिश्ते की शुरुआत प्यार से चाहता हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें फोर्स करूंगा। अगर तुम रेडी नहीं हो तो बोल दो, तुम भी ना पागल हो जो इतनी देर से मुझे ये कहने में डर रही थी। तभी मैं सोचूं तुम्हें बाथरूम में इतना टाइम क्यों लगा, और ऊपर से ठीक से खा भी नहीं रही। हम किसी और दिन कर लेंगे डॉल, जिस दिन तुम दिल से तैयार होगी, पर एक बात का प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। बोलते हुए आहान ने प्रॉमिस लेने के लिए अपना हाथ आगे किया। चाहत ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वो अभी भी आहान की पर्सनैलिटी को समझ नहीं पा रही थी। कभी वो उससे इतने प्यार से बात करता और उसे समझने की कोशिश करता, तो कभी गुस्से में बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव करता। थोड़ी देर पहले चाहत की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो गार्ड तक से लड़ पड़ा, तो कभी वो इस बात को लेकर बार बार चाहत को सुना रहा था कि वो उसकी मॉम का इलाज करवा रहा था। 2 ही दिनों में आहान ने चाहत के काफी सारे रंग देख लिए थे। उनमें से असली कौन सा था ये चाहत अभी भी नहीं समझ पा रही थी। चाहत को खोया हुआ देखकर आहान ने फिर कहा, देखो अभी तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो इस तरह तुम मेरे सामने लॉस्ट मत रहो, मुझे ये पसंद नहीं है। बोलते हुए आहान अपने हाथों से चाहत को खाना खिलाने लगा। थैंक यू सो मच आहान, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, चाहत ने हल्का मुस्कुराकर कहा। फिर वो भी अपने हाथों से आहान को खाना खिलाने लगी। यूं समझ लो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा हूँ सब अपने लिए ही कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए डॉल, और तुम्हें खुश देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है, तो बस ये समझ लो कि अपने सुकून के लिए मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। अब तक तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ मिस किया है, पर अब से ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा, आहान ने जवाब में कहा। थोड़े ही टाइम में चाहत उसके लिए खास बन गई थी और ये उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था। चाहत ने उसकी बात पर हामी भरी। डिनर हो जाने के बाद दोनों साथ में बेडरूम में थे। आहान ने देखा चाहत अभी भी बाथरूम में है। आहान ने गहरी सांस लेते हुए चाहत की तरफ देखकर कहा,
इस तरह तुम्हारे लिए पूरी रात बिताना मुश्किल हो जाएगा। कल हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे, तब तक तुम ऐसा करो कि मेरा ही कुछ पहन लो। बोलते हुए आहान अपने क्लोजेट एरिया में आया और वहां से एक ओवरसाइज टी शर्ट निकाली। आहान ने टी शर्ट चाहत को लाकर दी और कहा, फिलहाल के लिए मेरे पास तुम्हारे साइज का यही है, बस एक रात के लिए एडजस्ट कर लो। चाहत ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हां में सिर हिलाया और टी शर्ट लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर में वो वापस आ गई थी। आरव की टी शर्ट उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर तक आ रही थी। अच्छी लग रही हो, आहान ने उसे गौर से देखते हुए कहा, फिर उसे बेड पर आने का इशारा किया। चाहत के बेड पर आने के बाद आहान भी उसके पास आकर लेट चुका था। उसने चाहत को अपनी बाहों में लिया और लाइट्स ऑफ करके कहा, गुड नाइट डॉल, अच्छी नींद सोना और मेरे ही सपने देखना। चाहत ने भी उसे गुड नाइट विश किया और फिर सोने की कोशिश करने लगी। आहान ने उसे इतना कसकर पकड़ रखा था कि चाहत को नींद नहीं आ रही थी। उसने महसूस किया आहान कुछ ही देर में सो चुका था। नींद में भी उसकी पकड़ काफी टाइट थी, इससे चाहत को सोने में दिक्कत हो रही थी। क्या ये मुझसे प्यार करने लगे हैं इसलिए मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, या फिर इसलिए क्योंकि मेरे साथ रहने पर इनका गुस्सा कंट्रोल में रहता है? जो भी हो, आज इन्होंने मेरी बात मानी, इसका मतलब मैं गलत समझ रही थी। ये ऐसे बिल्कुल नहीं है, बस गुस्से की वजह से थोड़े रूठ हो जाते हैं। मुझे इनके साथ रहना चाहिए ताकि ये ठीक हो जाएं। इनके ठीक होने के बाद मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। अपने ख्यालों में खोए हुए चाहत को भी थोड़ी देर में नींद आ गई। चाहत के दिल में आहान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर बन गया था, लेकिन वो आहान के लिए प्यार नहीं था। चाहत आहान को ठीक करना चाहती थी, ना कि उसके साथ पूरी लाइफ रहकर अपनी जिंदगी बिताना। शिवानी के एक्सीडेंट के बाद से ही ओबरॉय मेंशन खाली पड़ा था। विजय ओबरॉय अभी तक घर नहीं आया था। ऊपर से दामिनी भी मिसिंग थी, तो वो उससे कॉन्टैक्ट करने में लगा था। आहान का भाई आयुष उसके लिए रखी वेलकम पार्टी को अटेंड करने के बाद 2 दिन बाद वापस घर लौटा था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर गया था।
घर आते ही आयुष जोर जोर से चिल्लाने लगा, मॉम मॉम डैड, कहाँ हो आप लोग? आई नो मैं जल्दी आ गया हूँ, मेरा एक हफ्ते का बाहर घूमने का प्लान था, लेकिन आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगा। आयुष ने महसूस किया उसके आवाज लगाने के बाद भी उसके पास कोई नहीं आया। उसने अपने मॉम डैड के कमरे में जाकर देखा तो वो भी खाली पड़ा था। वहाँ हाउस हेल्पिंग स्टाफ के अलावा और कोई नहीं था। आयुष ने वहाँ काम करने वाले लोगों से पूछा, मॉम कहाँ है और डैड, इतनी सुबह तो वो ऑफिस नहीं जाते हैं, मुझे घर इतना खाली क्यों नजर आ रहा है? शिवानी मैम और विजय सर पिछले 2 दिनों से ही घर नहीं आए हैं, हमने आहान सर से कॉन्टैक्ट किया था तो उन्होंने बताया कि वो इंडिया से बाहर गए हैं, आप उनसे बात करने जा सकते हैं, वहाँ काम कर रही एक औरत ने जवाब दिया। शिवानी के एक्सीडेंट होते ही आहान ने ओबेरॉय मेंशन में काम करने वाले लोगों से यही कहा था, ताकि कोई पुलिस को ना बुलाए या मामला मीडिया तक ना पहुंचे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उनका तो बाहर जाने का कोई प्लान नहीं था, आयुष ने हैरानी से पूछा। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, आप आहान सर से जाकर पूछ सकते हैं, उस औरत ने बताया और फिर वापस अपने कामों में लग गई। अपने घर पर किसी को ना देखकर आयुष के चेहरे पर उदासी थी। वो अपने कमरे में आया और रूम के एक कोने में नीचे बैठ गया। आयुष का चेहरा उसके घुटनों में था और उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें चल रही थी। वो लगभग 5 साल का था जब एक बार इसी तरह स्कूल से घर पर आया था और उसे कोई दिखाई नहीं दिया था। आयुष उस वक्त बच्चा था और किसी को ना देखकर काफी डर गया था। उस वक्त के बाद से उसे अकेलेपन से डर लगने लगा था। आज भी किसी को ना देखकर आयुष काफी घबरा गया था। सब मुझे छोड़कर चले गए, ऐसा कैसे हो सकता है? जमीन पर बैठा आयुष बार बार इसी बात की रट लगाए हुए था। एक बात तो साफ थी, विजय ओबरॉय की बदौलत दोनों ही बच्चों का बचपन अच्छा नहीं था। आहान अपने गुस्से की बीमारी से जूझ रहा था तो वहीं आयुष को अकेलेपन से डर लगता था। वहां बैठे बैठे उसे महसूस होने लगा कि कमरे में मौजूद चीजें चलकर उसे खाने के लिए उसके पास आ रही हैं। आयुष ने फिर से अपना चेहरा घुटनों में दबा लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे एक तरह का पैनिक अटैक आ रहा था और उस वक्त घर में ऐसा कोई नहीं था जो आयुष को संभाल सके।